नमस्कार भारत। आज है 25 जून दिन रविवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पुर्तगाल के बाद अब अमरीका पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल ट्रंप से मुलाकात पर रहेगी नजर।
सबसे पहले मुलाकात में ये देखना है कि दोनों की क्या उतनी आत्मीयता हो पाएगी जितनी ओबामा और मिस्टर मोदी की थी।
भारतीय कश्मीर में डीएसपी की हत्या मामले में गिरफ्तारी, विशेष जांच दल का गठन। दिल्ली से ईद की खरीदारी कर लौटते लड़के को पीट कर मार डालते समय क्या हुआ था ट्रेन में?
पूरा डब्बा एक हो गया, सारे जितने भी थे वो सब कह रहे थे मुसलमान है, मारो इनको, ये देश द्रोही है, मारो इनको। 16-17 घंटे का रोजा चल रहा है, रोजा भी नहीं खोल पाया।
और रमजान में कैसे कटता है वक्त मुस्लिमों को जीवन साथी बनाने वाली हिंदू पत्नियों का। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। तीन देशों के दौरों पर निकले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुर्तगाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। मोदी पुर्तगाल से अमरीका की ओर रवाना हो गए हैं, जहाँ वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी नीदरलैंड होते हुए भारत लौटेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लाल सागर के दो द्वीपों का मालिकाना हक सऊदी अरब को देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक सरकारी वकील रफीक शरीफ ने बताया कि राष्ट्रपति का आदेश अब कानून है और द्वीप अब सऊदी अरब का हिस्सा हैं। हालांकि देश की संवैधानिक अदालत को अभी ये फैसला देना है कि इस मामले में अंतिम फैसला संसद का माना जाएगा या न्यायपालिका का। सऊदी के साथ हुए इस समझौते पर एक साल से कानूनी बहस हो रही है और इसे रद्द भी किया जा चुका है, और रद्द किए जाने के बाद इसे फिर से लागू भी किया जा चुका है। बीते साल जब सीसी ने ये द्वीप सऊदी को देने का फैसला किया था, तो देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। बीबीसी संवाददाता का मानना है कि उन्होंने सऊदी अरब के निवेश के बदले में बड़ा राजनीतिक खतरा उठाया है। दोनों देशों की सरकारों का कहना है कि ये द्वीप हमेशा से सऊदी अरब के थे और इन्हें 60 साल पहले मिस्र की सुरक्षा में सौंपा गया था। इन द्वीपों पर कोई रहता नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के खाड़ी देशों की शर्तें न मानने की स्थिति में कतर के साथ संबंध खत्म करने की चेतावनी दी है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अनवर गारगाश ने यह भी कहा है कि यदि कतर 10 दिनों के भीतर पड़ोसी देशों की शर्तें नहीं मानता है, तो उस पर और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुबई में एक प्रेस वार्ता में गारगाश ने कहा, कूटनीति को एक दो मौके और दिए जा सकते हैं, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि समझौता कहां हो सकता है, लेकिन अंततः यदि कतर चरमपंथ और आतंकवाद को दिए गए अपने समर्थन को स्वीकार नहीं करता है और इस समस्या का समाधान नहीं करता है, तो हम यही कहेंगे कि ठीक है, अब तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हुए, तुम अपने रास्ते चलो। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि यमन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी हैजा महामारी का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस समय यमन में 2,00,000 से अधिक लोग हैजा से पीड़ित हैं। 1,300 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। यमन में इस समय गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से देश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य मदद न मिलना इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन सरकार से देश के 30,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन अदा करने के लिए कहा है। इन कर्मचारियों को 10 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडेज डे किर्चनर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगने के बावजूद सीनेट में सदस्य पद के लिए अक्टूबर में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इसी महीने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो पहली बार विपक्ष के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा किर्चनर अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन के मामलों में भी जांच का सामना कर रही हैं। किर्चनर ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। अर्जेंटीना में सीनेट सदस्यों को जेल नहीं भेजा जा सकता है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। तीन देशों के दौरे पर निकले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाल का दौरा पूरा कर अमेरिका पहुंच गए हैं। वहां कल यानी 26 तारीख को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। व्हाइट हाउस ने थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें एक सच्चे दोस्त के साथ रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच के अच्छे रिश्ते देखने वालों को लगता है मोदी और ट्रंप के बीच भी रिश्ते बेहतर ही होंगे और दोनों देशों के व्यापारियों को इससे फायदा होगा। वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
आई एम ए बिग फैन ऑफ हिंदू एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिया। बिग फैन।
ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव से ठीक दो हफ्ते पहले। भारत हमको जान से प्यारा है के गीत गाते हुए और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए। चुनाव के बाद के कुछ दिनों तक भी टेलीफोन पर ये प्यार का इजहार जारी रहा। जल्द ही मिलने की बातें हुई और लगा कि मोदी और ओबामा के रिश्तों में जो गर्माहट थी, जिसे कुछ लोग ब्रोमांस का नाम दे रहे थे, कुछ वैसा ही या उससे भी बेहतर इस नए रिश्ते में नजर आएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद ट्रंप के वॉशिंगटन से H-1B वीजा पर लगाम कसने की आवाजें तेज होने लगीं। कुछ भारतीय ट्रंप के आर्थिक राष्ट्रवाद और कथित मुसलमान विरोधी बयानों की बलि चढ़े और फिर पेरिस जलवायु समझौते से निकलने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक तरह से पहली बार भारत पर सीधा हमला किया।
इंडिया मेक्स इट्स पार्टिसिपेशन कंटिंजेंट ऑन रिसीविंग बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन एड From developed countries.
कुछ ऐसे ही बदले बदले से मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। भारत के बारे में ट्रंप की अब क्या सोच है, फिलहाल न तो इसका अंदाजा किसी को लग पाया है और न ही भारत के बारे में उनके प्रशासन की कोई नीति स्पष्ट तौर से नजर आई है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में भारत अमेरिका मामलों की जानकार अपर्णा पांडे का कहना है कि फिलहाल तो मोदी की सबसे बड़ी चुनौती होगी ट्रंप के साथ एक रिश्ता कायम करना।
एक तरफ मेक इन इंडिया है, दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो उसमें क्या अमेरिका भारत के साथ उतने ही क्लोज वित्तीय इकोनॉमिक और ट्रेड ताल्लुकात रखेगा या क्या वो फिर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कर देगा कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें हमारे यहाँ और आपकी कंपनीज इतने जॉब्स यहाँ क्रिएट करें तो फिर हम आपके साथ एक रिश्ता करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले मुलाकात में ये देखना है कि दोनों की क्या उतनी आत्मीयता हो पाएगी जितनी ओबामा और मिस्टर मोदी की थी।
भारतीय और अमरीकी अधिकारियों के अनुसार आतंकवाद, H-1B वीजा, व्यापार संबंध, ऊर्जा, इन सब मामलों पर बात होगी। कुछ समाचार एजेंसियां सूत्रों के हवाले से कह रही हैं कि संभव है कि ट्रंप भारत को हवाई निगरानी करने वाले गार्डियन ड्रोन बेचने का ऐलान कर सकते हैं। ये सौदा $2 अरब का है, लेकिन भारत के नज़रिए से ये एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि वो 2015 से ही इसकी मांग करता रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वो पहला ऐसा देश होगा जो औपचारिक रूप से अमेरिका का रणनीतिक साझेदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये ड्रोन बेचे जाएंगे। ओबामा प्रशासन में दक्षिण एशिया मामलों के निदेशक रह चुके जोशुआ व्हाइट का कहना है कि मुलाकात के दौरान मोदी की ये भी कोशिश होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान और चीन पर ट्रंप की नीति क्या होने जा रही है इसका अंदाजा ले सकें। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह दौरा कामयाब तभी कहलाएगा जब ट्रंप के लिए इसमें कुछ ऐसा हो जिसे वो अपने चाहने वालों के बीच एक जीत के तौर पर पेश कर सकें। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना है कि ट्रंप प्रशासन मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा है और ट्रंप भी भारत के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। विश्लेषकों ने इस दौरे से एक शुरुआती मुलाकात से ज्यादा की उम्मीदें नहीं लगाई हैं, लेकिन ट्रंप की खासियत रही है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती। अब वो भारत के हक में जाएगा या उसके खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज, वॉशिंगटन।
मोदी पहुंचे अमरीका, राष्ट्रपति ट्रंप से कल होगी मुलाकात। भारत प्रशासित कश्मीर में गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP मोहम्मद अयूब पंडित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए अब एक विशेष जांच दल का गठन कर लिया गया है। उधर एक अन्य घटना में श्रीनगर के पास तांता चौक में CRPF के एक दस्ते पर हमला हुआ जिसमें दो जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर के नवहट्टा में बीती गुरुवार को पीट पीट कर मारे जाने वाले पुलिस अधिकारी डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित के मामले में पुलिस ने एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया है। यह टीम फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मामले की जांच करेगा। अभी तक इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल मुनीर खान ने बीबीसी को बताया,
उसमें केस रजिस्टर तो हो गया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है और उसमें द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरीड ऑन डे टू डे बेसिस।
डीएसपी पंडित की हत्या पर कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इसकी सख्त निंदा की है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए लोगों को खबरदार किया है कि कहीं पुलिस के सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए।
मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है, ये हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक जो है।
कश्मीर में डीएसपी पंडित की हत्या की यह पहली घटना है जब किसी पुलिस अधिकारी को बीड ने पीट पीट कर मारा हो। इस बीच कल शाम राजधानी श्रीनगर के पास पाता चौक में सीआरपीएफ के एक आरोपी दस्ते पर चरमपंथियों ने हमला किया, जिस हमले में सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर मारा गया है जबकि एक घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कश्मीर में सीआरपीएफ के कैंपों पर बीते दिनों कई चरमपंथ हमले हुए हैं। हालांकि चरमपंथ हमलों का केंद्र दक्षिणी कश्मीर माना जाता है। दक्षिणी कश्मीर को चरमपंथ का गढ़ भी कहा जाता है। आईजी कश्मीर जोन मुनीर खान कहते हैं,
इसमें ऐसे है जी, ज्यादा इसका इफेक्ट पोस्ट बुरहान इफेक्ट ज्यादा साउथ कश्मीर में ही रहा, स्पेशली त्राल, पुलवामा, शुपियां इन कुलगाम और द एरियाज जहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कुछ नए लोग मिलिटेंट रैंक्स में गए हैं। But it is not very alarming, but yes, alarming in the sense की recruitment बिल्कुल बंद हो चुकी थी और इन areas में से लोग नहीं जा रहे थे। पोस्ट बुरान कुछ लोग उसमें गए हैं।
कश्मीर में बीते कई महीनों से हालात बहुत ही अशांत हो गए हैं। दक्षिणी कश्मीर में बीते दिनों राजनीतिक हत्याएं भी हुई हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
उधर गुरुवार की ही रात एक लोकल ट्रेन से दिल्ली से हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर जा रहे 16 साल के एक मुसलमान लड़के जुनैद खान को भी ट्रेन में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। जुनैद और उनके दोस्त दिल्ली के सदर बाजार से ईद की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। जुनैद के भाई हाशिम खान से बात की हमारी सहयोगी मानसी दास ने और उनसे पूछा कि उस दिन ट्रेन में क्या हुआ था।
सदर से चढ़े थे हम, वहाँ से ट्रेन खाली थी, जाहिर सी बात है सीट खाली होगी, तो हम सीट पे आमने सामने दो दो बैठ गए, चार बंदे थे। ट्रेन जब चली तो वहाँ से दिल्ली से या तिलकगिर से एक बुजुर्ग बैठा था, मेरे भाई जुनैद से उसने कहा बेटे सीट छोड़ दो मेरे लिए, तो उस जुनैद ने सीट छोड़ दी उसके लिए, वो बैठ गया था। वहाँ से जब ओखला आई ट्रेन एकदम बुक हो गई थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी उसमें। ओखला से एकदम 20-25 बंदे वो चढ़े थे, धक्का मुक्की हुई तो मेरे भाई जुनैद को भी धक्का लगा, तो इतनी जोर से धक्का लगा वो नीचे गिर गया था ट्रेन के अंदर ही। तो हमने कहा तुम धक्के क्यों मार रहे, तो जुनैद ने भी यही कहा धक्का क्यों मार रहे, तो उन्होंने मेरे सर पे टोपी देख के कहा तुम मुसलमान हो, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, गोश्त खाते हो, मीट खाते हो, और मेरे सर पे से टोपी उसने जोर से हटाई। दाढ़ी पकड़ने की भी कोशिश की थी उसने, तो वहीं से जैसे दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की उसने, मैंने रोकने की कोशिश की, तो वहीं से उसने मारपीट चालू की। कम से कम 10-15 बंदों ने हमको मारा था, चार बंदे थे, हम बच्चे ही थे मुझसे और वे तीन छोटे थे। तो वहां से मारते हुए अगले स्टेशन आ गया तुगलकाबाद आया, तो मैंने फिर फोन किया भाई के लिए, भाई हम हेल्प के लिए आ जाओ बचाने के लिए, तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो भाई पहुंचा मुझसे बड़ा था, तो जैसे ही ट्रेन बल्लभगढ़ में रुकी फिर भी उसमें इतनी भीड़ थी हम उतर नहीं पाए उसमें, और उतरने भी नहीं दिए उन्होंने, तो भाई चढ़ा ट्रेन के अंदर हमें बचाने के लिए, तो वो भी उन्होंने अंदर खींच लिया था, उसको भी मारपीट चालू थी। जैसे ही बल्लभगढ़ से ट्रेन चालू हुई वहीं से उसने चाकू निकाला, तो वहां से पहले साकिर को मारना चालू किया, तो जब साकिर को मार रहे थे तो जुनैद बचाने के लिए गया तो जुनैद को भी मारा, फिर मुझे भी पकड़ रखा, तो मैं भी कोशिश की छुड़ाने की, फिर मैंने छुड़ा के मैं भी उसके बचाने के लिए भागा, तो मेरे को भी चाकू लगे, तो साकिर को और भाई जो बड़ा है और जिसकी डेट हो गई वो छोटा है, उनको ज्यादा इतना मारा था वो नीचे गिर गए थे ट्रेन के अंदर, तो उनके दिल में ये हो गया था अब ये मर गए, तो उन्होंने जब वहां से अगला स्टेशन बल्लभगढ़ से असाउटी तक उन्होंने सोचा अब तो ये खत्म हो लिए, तो जैसे असाउटी ट्रेन रुकी انہوں نے ان کو پھینک دیے. وہ پچھلی طرف سے اترے ہم پلیٹ فارم تک, پھر ہم نے فون کیا ایمبولینس کو, فون کرنے کے باوجود آدھے گھنٹے میں آئی.
جو لوگ چڑھے تھے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے,
بلہ گڑھ سے کے ساتھ 20-25 چڑھے تھے اور بلہ گڑھ تک وہ 20-25 ہی تھے. تو پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن جب بلہ گڑھ سے ٹرین چلی پورا ڈبا غیر مسلم تھے, ہم ہی 4 بندے 5 بندے تھے. بھائی چڑھ گیا تھا وہاں بلہ گڑھ سے, پورا ڈبا ایک ہو گیا. سارے جتنے بھی تھے وہ سب کہہ رہے تھے مسلمان ہیں مارو ان کو, یہ دیش دروہی ہے مارو ان کو. 16-17 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے اور جون میں آپ کو پتا ہے کتنی گرمی ہوتی ہے, روزہ تھا ہمارا, روزہ بھی نہیں کھول پائے ہم.
اب سرکار سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟
ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جی, جو ہمارے ساتھ گھٹنائی ہوئی تو جلد سے جلد جس نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ کیا, ہمارے ساتھ مار پیٹ چالو کی, میرا بھائی ایک پکڑ گیا اور ایک ہاسپٹل میں ہے, میرے بھی چاقو لگے, تو ان کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور بھائی کو, مسلمان بھائی کوئی حافظ جنید نام کا, کوئی اور انتقال نہ فرمائے, ان کے اوپر کوئی ایسا نہ ہو. اور آج مسلمان مرا ہے کل ہندو کو بھی اوپر ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں, وہ تو یہی کام کرتے ہیں.
ٹرین میں مار دیے گئے یوک جنید کے بھائی ہاشم خان. مانسی داش نے جنید کے پتا جلال الدین خان سے بھی بات کی.
میرا بچہ پڑھتا تھا ہاسٹل میں, میوات کے اندر نہوں شہر ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس میں ہاسٹل ہے, اپنے اردو کی اور انگریزی پڑھائی جاتی ہے, اس میں وہ پڑھتے تھے. ایک مہینہ پہلے ہمارا یہ رمضان مہینہ آ جاتا ہے تو وہ رمضانوں سے ایک ہفتہ پہلے وہ چھٹی ہو جاتی ہے ان کی, تو وہ میرے پاس تھے اب فی الحال ایک مہینے سے. تو وہ انہوں نے قرآن سنائی گاؤں میں, یہ ہماری قرآن جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں, انہوں نے قرآن سنا کر پہلی بار قرآن سنائی ہے انہوں نے. وہ ان کو جو قرآن سنایا جاتا ہے ان کو حافظ بولتے ہیں ہم, ان کو جو قرآن پڑھ جاتا ہے وہ حافظ ہو جاتا ہے. تو ان کو لقب مل گیا حافظ کا. تو وہ خوشی خوشی میں وہ دلی جا رہے تھے, دلی چلے گئے شاپنگ کرنے کے لیے صدر بازار. صدر بازار سے جب لوگ واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ٹرین میں حادثہ ہوا.
پولیس نے کیا وجہ بتائی تھی؟
پولیس نے وجہ ابھی کچھ نہیں بتائی ہمیں, تو ویسے دو لوگ گرفتار کر لیے ہیں, ان کی پہچان بھی ہو گئی ہے.
جی پولیس کی جانچ اب کس موڑ تک پہنچی ہے؟
ابھی میں صبح 10 بجے ایس پی صاحب نے بلایا تھا, میرے بچے بلائے تھے, جو اور جو بچے ان بچے میرے بچوں کے ساتھ تھے, جو بچے جن کے چوٹ نہیں آئی وہ بھی گئے تھے ساتھ میں. یہ دو لڑکے انہوں نے گرفتار کیے تو ان کی پہچان کرائی گئی ہے.
یہ تھے ٹرین میں مار دیے گئے یوک جنید کے پتا جلال الدین خان.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 49, 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 6155, 7995, 9915 اور 11995 کلو ہرٹز, اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا میں آپ سن رہے ہیں نمسکار بھارت. اور آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کے اخبار. دل نواز ان پر نظر ڈال چکے ہیں, کیا خبریں دل نواز آج اخباروں میں؟
جی اپورو, سب سے پہلے بات انڈین ایکسپریس کی, جو اسی خبر کو آگے بڑھا رہا ہے جو ابھی ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنائی ہے, جنید کی چلتی ہوئی ٹرین میں ہتیا. انڈین ایکسپریس اخبار بتا رہا ہے کہ فرید آباد کے آسوتی ریلوے اسٹیشن پر جہاں جنید حملے کے بعد اترے تھے اور وہاں پہ لہو لہان وہ پڑے رہے تھے, وہاں پر ان کا رپورٹر گیا اور کسی بھی ویکتی نے گھٹنا کا چشمدید ہونے سے انکار کیا, اسٹیشن ماسٹر, پاس کے پوسٹ ماسٹر, آس پاس کے دکان والے, لیکن جو ویڈیو آئے ہیں ان میں کافی بھیڑ دکھ رہی ہے. یہی نہیں, جو سی سی ٹی وی ہے وہاں پر جو اس اسپاٹ کو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ بھی چھیڑکانی کی گئی ہے, یہ ریلوے کے ادھیکاری نے انڈین ایکسپریس اخبار کو بتایا ہے. اس کے علاوہ دو خبریں عام آدمی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں. ایک, جو ودھائک ہیں 20 جن پر لابھ کے پد معاملے میں کاروائی چناؤ آیوگ کر رہا ہے وہ جاری رہے گی, تو یہ ایک جھٹکا ہے. اور دوسرا جھٹکا یہ ہے کہ دلی کے ایل جی نے پی ڈبلیو ڈی معاملے میں کیجریوال کے خلاف جانچ کی انومتی دے دی ہے. تو آج کا اخبار عام آدمی پارٹی کے کارکرتا اور سمرتھکوں کے لیے بہت سکھد نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو دھیان کھینچ رہی ہے, مدھیہ پردیش کے منتری ہیں نروتم مشرا, جن کو 2008 میں پیڈ نیوز کے معاملے میں چناؤ آیوگ نے دوشی پایا ہے, اور نہ صرف ان کی سدسیتا رد کی ہے بلکہ ان کے 3 سال تک چناؤ لڑنے پر بھی چناؤ آیوگ نے پرتیبندھ لگا دیا ہے. تو اب نروتم مشرا چناؤ نہیں لڑ پائیں گے.
کس چیز کے منتری؟
جی یہ وہاں پر پبلک ریلیشنز منسٹر ہیں, پی ڈبلیو وہاں پہ جن سمپرک منتری ہیں شیوراج سنگھ چوہان کی سرکار میں, تو یہ ان پر فیصلہ. اس کے علاوہ مہاراشٹر سرکار نے جو کسانوں کو قرض دینے کی گھوشنا کی تھی اس کا آدھیکارک اعلان مکھیہ منتری نے کر دیا ہے. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 34,000 करोड़ रुपए तक के किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे, और ये खबर आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है सभी अखबारों में है, दिल्ली के पास जेवर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलने जा रहा है।
नोएडा में जो जेवर,
जी बिल्कुल, ये ऐलान कल सरकार ने किया था, और जो दिल्ली के लोग खासकर पूर्वी दिल्ली और इधर के इलाके में ग्रेटर नोएडा नोएडा या पश्चिमी यूपी के लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी एयरपोर्ट जाने पर। ये खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, और जनसत्ता बता रहा है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, ये छत्तीसगढ़ की घटना है, ये आज के जनसत्ता की खबर है। जी अपूर्व,
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए। और रमज़ान का महीना है और ईद आने वाली है, और पूरे देश में ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, लेकिन उन महिलाओं का क्या हाल है जिन्होंने सालों पहले समाज से बगावत करके एक मुसलमान लड़के से शादी की। ऐसी औरतों का हाल और ईद के प्रति उनके नज़रिए को जानने की कोशिश की पटना में सीटू तिवारी ने।
मैं जब 54 साल के जिया हसन से मिली तो वो लोकल स्ट्रीट थिएटर की वर्कशॉप में थे। वो बहुत धैर्य के साथ अपने स्टूडेंट्स को अभिनय और लेखन से जुड़ी बारीकियां बता रहे थे। वैसे जिया का जो सब्र या धैर्य थिएटर वर्कशॉप में दिखा, उससे ज़्यादा सब्र उन्होंने अपने निजी जीवन में रखा। ये 1978 की एक शाम थी जब उन्हें खेल के मैदान में आने वाली एक लड़की के साथ मोहब्बत हुई थी। 29 साल बाद यानी 24 अक्टूबर 2007 को उन्होंने उस लड़की यानी मृदुला से शादी की। जिया कहते हैं, मैं उतना ही हिंदू हूँ जितनी मेरी बीवी मुसलमान।
तो जितने भी त्योहार हैं दुनिया में उसका उद्देश्य ही है मोहब्बत फैलाना, वहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं आती है।
जिया और मृदुला दोनों ने कोर्ट मैरिज की। मृदुला ने अपना धर्म नहीं बदला, वो आज भी किसी हिंदू स्त्री की तरह ही अपने धर्म का पालन करती हैं। मृदुला बताती हैं कि जब शादी के बाद पहली बार ईद पड़ी तो पारंपरिक व्यंजन बनाने में थोड़ी मुश्किल महसूस हुई, लेकिन सास ने सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद तो ईद के त्यौहार और रमजान के इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है।
ईद की तैयारी पहले दफा मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर गया और अभी भी मुझे करता है। ये महसूस होता है कि 30-30 दिन लोग कैसे इस तरीके से फास्टिंग रखते हैं, और दिन से ही औरतें बच्चे मर्द सब के सब काम में लग जाते हैं, उफ तक नहीं करते।
नूतन पटना शहर के बहुत ही मशहूर ब्यूटी पार्लर की मालकिन हैं। आजकल उनकी मसरूफियत बढ़ गई है, उन्हें पार्लर में भी काम देखना है और ईद की भी तैयारी करनी है। उन्होंने 26 साल पहले तनवीर अख्तर से कोर्ट मैरिज की थी। नूतन कहती हैं कि मुझे होली और ईद एक जैसे दिखते हैं। वो कहती हैं कि मुसलमानों के नाम पर डर पैदा किया जाता है, लेकिन अगर आप एक बार उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो दिल में ये एहसास गहराता जाता है कि वो भी हम जैसे ही हैं।
होली से हमको बहुत कुछ मिलता है, जैसे होली में भी हम लोग खीर बनाते हैं तो सेवई है, हुआ यहाँ ईद में भी बनता है, छोला हुआ, दही बड़ा हुआ, अलग तो हमको कहीं से नहीं लगता है कि हम मुस्लिम बैकग्राउंड में चले गए तो ये कुछ अलग होगा।
पटना के फ्रेजर रोड इलाके की रहने वाली शालिनी वर्मा की मोहब्बत भी कम उम्र में ही जवां हुई थी। बड़े भाई के दोस्त एजाज हुसैन से मोहब्बत हुई तो दुनिया के सारे डर को किनारे रख दिया। 2001 में पहले कोर्ट में शादी की और उसके बाद कलमा पढ़कर निकाह किया। शादी होने के बाद हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ी। वो बताती हैं कि शादी के बाद जब पहली बार रमजान के महीने को करीब से देखा तो बड़ा एक्साइटमेंट महसूस हुआ। रोजाना शाम को इफ्तार की तैयारी, उसको मोहल्ले भर में बांटना जिंदगी में एक नया रंग लाया। वो कहती हैं,
दूर से देखना और लगता था कि जाके देखे कैसे इन लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मनाते हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो जब हम किसी चीज़ से दूर रहते हैं और वो मिलता है तो वो अलग एक्साइटमेंट होता है, तो वही चीज़ मेरे साथ था।
हमारे त्योहारों का ताना बाना कुछ ऐसा है कि उससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है। बदकिस्मती से ये ताना बाना हाल के सालों में कुछ कमज़ोर पड़ता सा दिखता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी ये हिंदू महिलाएँ दिल को सुकून के एहसास से भर देती हैं। सीटू तिवारी, BBC पटना।
और रमजान के वक्त की यह खबर पाकिस्तान से है जो हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर है। यह खबर है कि वहां पाकिस्तान में एक शख्स ने एक मस्जिद से 50,000 रुपए की चोरी की और साथ में एक चिट्ठी छोड़ गया कि यह मामला उसके और अल्लाह के बीच का है और किसी और को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दिलनवाज के हाथ में पूरी खबर है। दिलनवाज, क्या है ये खबर?
जी अपूर्व, मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं भी काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिरकार अल्लाह के घर में चोरी करके बंदा सीधे मामला अपने और अल्लाह के बीच बता सकता है। खैर, खबर अखबार के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि घटना दक्षिणी पंजाब के खानेवाल जिले में स्थित जामिया मस्जिद सादिकुल मदीना में हुई। यहाँ चोर ने रुपये से भरे दो बक्से उठाए जिनमें मस्जिद आने वाले लोगों के चंदे थे। वे साथ ही मस्जिद में रखी यूपीएस की दो बैटरियां भी ले गया जिनसे बिजली न रहने के समय मस्जिद में रोशनी की व्यवस्था की जाती थी। उसने मस्जिद से जाते वक्त एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था, ये मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, कृपया कोई भी मुझे खोजने की कोशिश न करे, मैं बहुत ही ज़रूरतमंद इंसान हूँ और इसलिए अल्लाह के घर से चोरी कर रहा हूँ। यही नहीं, जो चोर था उसने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि कुछ दिन पहले मैंने इसी मस्जिद के इमाम साहब से मदद की गुजारिश की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद में जो यूपीएस है वो हम चंदा देके लगवा देंगे और लिहाजा चोर की तफ्तीश ना की जाए। हालांकि जो इमाम साहब हैं उनका कहना है कि चोर को पकड़ा जाना चाहिए और उसे हिसाब लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो व्यक्ति कौन था जो उनके पास मदद मांगने के लिए आया था।
वो ये भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कोई आया।
जी हाँ, उन्होंने इस बारे में कोई
जी
उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। हालांकि खबर दिलचस्प है, मामला सीधे अल्लाह और चोर के बीच का है। और इसके साथ ही एक ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। कल मैं देख रहा था बहुत से लोग इस खबर को अलग अलग तरीके से शेयर कर रहे थे और कहीं ने तो सवाल पूछा कि क्या अल्लाह के घर में चोरी करना जायज़ है। इसमें बहुत से लोगों का ये कहना था कि चोरी चोरी है, वो भले अल्लाह के घर में हो या किसी के घर में हो, क्योंकि आमतौर पर मुसलमान ये मानते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है, लेकिन ये पहला इस तरीके का वाकया नहीं है। इससे पहले भी मंदिरों से मूर्तियां चुराने
की पाकिस्तान की ये खबर इसी इलाके की है एक, कि वहाँ पे मस्जिद में पिछले साल भी रमज़ान के समय कोई एक पानी की जो नलका होता है वहाँ पर उसके लिए क्या उसे कहते हैं, जो
लोटा जो होता है हाथ धोने के लिए,
नहीं नल लगा हुआ था जिससे वो नमाज पढ़ने से पहले वजू करने के लिए जो रहता है वो निकाल कर ले गया था और साथ में वो एक चिट्ठी छोड़ गया कि वो गरीब है, पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब वो पैसा लौटा देगा मस्जिद को। बहुत बहुत धन्यवाद दिलनवाज इस खबर की जानकारी देने के लिए। अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत के श्रीकांत की शानदार फॉर्म और जीत का सिलसिला जारी है और कल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। के श्रीकांत ने कल खेले गए सेमीफाइनल में अपने विरोधी चौथी वरीयता हासिल चीन के शी युकी को जमने का मौका ही नहीं दिया और केवल 37 मिनट में ही 21-10, 21-14 से हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया। अब आज फाइनल में के श्रीकांत का सामना चीन के चेन लॉन्ग से होगा जिन्होंने कल दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के ली यून को 1 घंटे 8 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद 26-24, 15-21, 21-17 से हराया। वहीं लंदन में आयोजित किए जा रहे हॉकी विश्व कप सेमीफाइनल्स में 5वें से 8वें स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारत ने कल पाकिस्तान को 6-1 से करारी मात दी। भारत के रमनदीप सिंह और मनदीप सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि तलविंदर सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल एजाज अहमद ने किया। उधर कल से ही इंग्लैंड में आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ जहां भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ शानदार आगाज करते हुए मेजबान इंग्लैंड को 35 रन से मात दी। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 282 रनों का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी पारी 47.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की फ्रांसिस विल्सन ने 81 रन बनाए। भारत की दीप्ति शर्मा ने 47 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना के 90 और पूनम राउत के 86 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 281 रन बनाए। वहीं आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।
और अब मुख्य समाचार।
तीन देशों के दौरे पर निकले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुर्तगाल पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से वार्ता की है। अब मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लाल सागर के 2 द्वीपों का मालिकाना हक सऊदी अरब को देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि यमन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी हैजा महामारी का सामना कर रहा है। यहाँ 2 लाख लोग हैजा से पीड़ित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण को मानवाधिकार का दर्जा देने वाले वैश्विक समझौते पर काम करने का वादा किया है। वो नए कानूनी रूप से बाध्य समझौते का मसौदा पेश कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
तो इसके साथ ही ये सब अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया तिलक राज भाटिया ने। अब अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।